अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज कौन सा विचार करें, वही के आगे चले। महाराज जी आगे चलेंगे पीछे वाले करें?
पीछे वाले करो, मैं नहीं कुछ किया, मैं तो पहले एवं शुरू कर दिया तो वो टाइम हो गया।
अच्छा,
कल वो ही किसी तरह।
हाँ जी,
जोड़ा लास्ट वाला सी वो खोल दो
अध्यास वाला,
बाकी इन्होंने पूछ लो। क्यों जी,
आगे तो सातवीं कला है, करनी तो पूरी है। महाराज जी कहते पूरी सोलह कलाएं करनी है।
हम तो छह ही करते हैं,
लेकिन तो आगे आगे आत्मा के विशेषण आएंगे, वो भी करने हैं। अब महाराज जी के चरणों में बैठ के
कहो वैसा कर,
आगे कहो तो आगे चलते हैं, दोबारा पीछे से उसको देखना हो तो फिर पीछे देख लेंगे।
तो जो जिसने कोई पढ़ा होगा ना, वो तो पूछेगा भी यही करो, ये अभी पक्का नहीं हुआ। जिसने नहीं हो पाएगा जो मर्जी कर दो।
अध्यास को ही बोलिए।
हैं जी,
अध्यास को ही करें दोबारा। ठीक है, अध्यास को दोबारा देख लेते हैं महाराज जी।
छेमी कला का जो लास्ट कल परसों जो करके गए
जी,
उसको जरा खोल दो फिर।
हाँ, अध्यास को देखते,
जरा कठिन है थोड़ा। जिसको समझ आ गई है वो तो कहेगा आगे करो, जिसको नहीं आई वो बोलता ही नहीं कोई। अब सच का मतलब सबको समझ आ गई।
अध्यास जो है ना, वो बताया था कि वेदांत का मूल जो है ना, आधार जो अध्यास है, वेदांत का विचार करने का मूल है कि अध्यास का विचार करना। अध्यास का अर्थ तो बहुत बार हम लोगों ने सुन दिया है, वैसे उसका मोटा अर्थ तो भ्रांति है, भ्रम है। और खोल के देखेंगे अध्यास, उस दिन में बताया था किसको कहते हैं। एक तो हमारी भ्रांति का विषय जो वस्तु, मिथ्या वस्तु, और उस मिथ्या वस्तु का ज्ञान, दोनों का अध्यास कहते हैं। इसलिए कहा था ना, अध्यास दो प्रकार का होता है, एक अर्थाध्यास, दूसरा ज्ञानाध्यास। अर्थ कहते हैं वस्तु को, विषय को कहते हैं अर्थ। वैसे अर्थ का अर्थ धन भी होता है, अर्थ कहते हैं धन को भी कहते हैं वैसे, और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं ना। यहां पर अर्थ का अर्थ है विषय, विषय वस्तु। विषय वस्तु समझते हैं कि नहीं आप लोग? समझते हैं विषय किसको कहते हैं? जो हमारी रुचि का, रुचि हमारी जिसको देख करके बनती ना, जो हमारे को आकर्षित करता, खींचता है अपनी तरफ, उसको विषय कहते हैं। जो विशेष करके हमारे को बांध लेता है उसको विषय कहते हैं। जो विशेष करके हमारे को खींच लेता ना, बांध लेता, अपने साथ जोड़ लेता, उसको विषय कहते हैं। कोई भी संसार की वस्तु हो, हमारी उसके तरफ आकर्षण होता है ना, तभी हम उसके साथ जुड़ते हैं। तो जो भी हमारी हमारा मतलब वो है ना, दो प्रकार का है ना, जैसे उदाहरण से समझेंगे, सीपी में चांदी है या रज्जू में सर्प है। चांदी हमारे को दूर से आकर्षित करती है, खींचती है ना अपनी तरफ, हम जाते हैं दौड़ के उसको प्राप्त करने। तो हमारा विषय क्या है, जो हमारी भ्रांति का, हमारे भ्रमण का, हमारे अध्यास का, भ्रम का विषय कौन है? सीपी में चांदी या रज्जू में सर्प। एक तो वो जो मिथ्या वस्तु है उसको, और एक उसका जो झूठा मिथ्या ज्ञान है, दोनों को अध्यास कहते हैं। अध्यास शब्द और भ्रांति शब्द दोनों एक ही हैं, कोई उनका अंतर नहीं है। भ्रांति को या भ्रम ही कह देते हैं हम लोग, इसलिए बार बार एक पंक्ति को बोलना पड़ता है ना। जैसे रविदास जी ने कहा, महाराज जी ने, कि माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, हे माधव भ्रम क्या है, भ्रम किसको कहते हैं? तो आप ही उत्तर दिया कि जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा हम मानते हैं ना किसी वस्तु को, वैसा वो ना हो उसी को भ्रम कहते हैं। जैसा हमने दूर से सीपी को मान लिया वैसी नहीं थी, उसको हमने चांदी रूप में मान लिया था ना, तो चांदी तो नहीं थी वो। ऐसा उसको यथार्थ को यथार्थ ना मानना ही तो अध्यास है, यही भ्रम है। तभी हम किसी चीज के भ्रम में पड़ते हैं ना, जब उसके यथार्थ रूप का हमारे को पता नहीं चलता। कोई हमारे को जैसे कोई बताता ना कि उधर आपने जाना है, इधर जाना, तो आप कहते कि हमारे को, जैसे हमारे को किसी ने रास्ता बतलाया ना, कई बार हम गाड़ी लेकर के जाते हैं, रास्ते देख के उसके बाद दूसरे दिन जाते हैं ना, तो यहाँ एक जैसे दो रास्ते होते, वहाँ भूल जाते हैं हम लोग, एक ही जैसे होते हैं दोनों रास्ते। तो क्या कहते हैं हम, कहते हैं आपने बतलाया तो था, हमारे को भ्रांति हो गई, हम भूल गए। भ्रांति का मतलब भूल गए हम लोग, भूलने का मतलब क्या हुआ, जैसा था वैसा हम समझ नहीं पाए इसलिए भूल गए। ये आम हमारे जीवन में हर रोज होता है ना, बहुत जगह हमारे को भ्रम होता है। इसी प्रकार जैसे हमारे को जीवन में व्यवहार में भ्रम होता है ना, उसका विषय क्या है वस्तु, उस भ्रम का विषय क्या है मिथ्या वस्तु, उसी प्रकार जो ब्रह्म है हमारा स्वरूप सचित आनंद है ना, उसमें हमारे को भ्रांति हो जाती है। कौन सी भ्रांति हो जाती है? जैसे स्थूल शरीर में हमारी भ्रांति हो गई, स्थूल कहते हैं मोटा बाहर वाला फैला हुआ, ये जो बाहर वाला हमारा शरीर है ना, इसके अंदर हमारे को भ्रांति हो जाती है। कब होती है? जब हम इसके स्वरूप को वास्तविक नहीं जानते कि ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जब हम ऐसा नहीं जानते तो भ्रम हो जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, ये हमारे को भ्रांति हो रही कि नहीं? क्यों हो रही है कि हमारे को अपने यथार्थ स्वरूप का मालूम नहीं, ना इसके बारे में मालूम है, इसके बारे में नहीं मालूम हमारे को ना, इसलिए हमारे को भ्रांति हो जाती है। उस दिन बताया था कि भ्रांति होती है वहां पर जहां पर हमारे को सामान्य रूप से ज्ञान होता है और विशेष रूप से अज्ञान होता है, वहां अध्यास होता है हमारे को। सामान्य रूप से तो हम शरीर को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये शरीर जो जड़ है, ये पांच तत्वों का बना हुआ है, इसको हमारा निश्चय नहीं हुआ कि ये ऐसा है, इसके साथ अभेद हो जाता है हमारा। तभी हम गोरा काला क्षत्रिय ब्राह्मण सब मानने लगते हैं ना अपने आप को, लेकिन क्षत्रिय धर्म इसका है हमारा नहीं है। इससे अलग हो करके आप देखो तो क्षत्रियत्व तो आपको कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो हम क्षत्रिय ब्राह्मण तो जाति मानते हैं, कहाँ मिलेगी हमारा इसको छोड़ करके? और कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा में कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में भी नहीं है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, सूक्ष्म शरीर में भी ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति या गोरा काला उसमें नहीं है, सब इसी में ही है। तो यही भ्रांति है, यही अध्यास है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ना जानना ही अध्यास है, यही भ्रम है। हम नहीं जान पाते जहां पर, वहीं हमारे को भ्रम होता है। सामान्य रूप से हम सारे संसार की वस्तुओं को सुन लेते हैं ना, कई बार कोई हमारे को कुछ भी बताता है तो हम सुन लेते हैं। बाजार की वस्तुओं के बारे में हम सामान्य रूप से जानते हैं, कनाडा अमेरिका जो फॉरेन कंट्री है उसके बारे में हम जानते हैं, सामान्य रूप से हमने सुन रखा है, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते, इसलिए हमारे को लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, इसलिए तो होता है ना, इसलिए तो हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लोग करते नहीं कोशिश, जो वहाँ जाते हैं उनको देखो पूछो क्या होता है, वो कहते हैं वहाँ जाने के लिए सोचो ही मत, अपने जैसा देश नहीं है वहाँ। ऐसे ही हम लोग स्वर्ग की बात या वैकुंठ की बात जब सोचते हैं तब भी तो ऐसे ही होता है ना, सुन रखा कि स्वर्ग में बड़ी मौज होती है तो स्वर्ग को जाने की कोशिश करते हैं ना, वैकुंठ में बड़ी मौज है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो जब जो वहाँ गए होंगे उनके पूछिए, जिनको उनके बारे में मालूम है कि वैकुंठ में क्या है, स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में यही हाल है जो जहाँ पर है, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी ईर्ष्या राग द्वेष इतनी है जितनी यहाँ है, वहाँ भी लड़ते हैं एक दूसरे से कि उसको सुविधा अच्छी मिली मेरे को नहीं मिली, इसको ऐसा मिला मेरे को नहीं मिला, वहाँ भी यही हाल है, एक ही जैसा है, अंतर नहीं है कोई भी। और जहाँ से भी आपको मर के वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से भी आपको नीचे गिरना पड़ता है, अंतर क्या हुआ? यहाँ से भी मर के जाना पड़ता है, वहाँ से भी जब आपका पुण्य खत्म हो गया तो नीचे गिरना पड़ता है। तो फिर हम नहीं मालूम, इसलिए जहाँ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ना। तो कहते हैं भी किसी को मालूम ही नहीं, कबीर जी कहते किसी को मालूम ही नहीं है, ना जाना वैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही। वैकुंठ को कहते किसी ने देखा नहीं है, किसी को मालूम नहीं है वैकुंठ कहाँ है, जान जान सब कहे तहाँ ही। सब लोग एक दूसरे सुनकर के कहते वहाँ है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। तो कहते हैं वैकुंठ की जब तक आपके अंदर लालसा है तब तक आपको प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। मानो हम किसी राजा के पास जाना हो ना, तो राजा को हम कहेंगे कि हम आपकी आपके महल में या आपकी नगरी में आना है, किसी से पूछ लिया कि फलाना जो राजा है वो दिल्ली में रहता है तो वहाँ जाना है। हम दिल्ली में पहुँच करके भी ये नहीं कि हम राजा के पास पहुँच जाएंगे, दिल्ली तो बहुत बड़ी है ना, वहाँ राजा कहाँ रहता है, राजे के बारे थोड़ी हमने सोचा है। तो हम वैकुंठ में जाना चाहते हैं ना, वैकुंठ वासी के पास थोड़ी जाना चाहते हैं, वैकुंठ अलग है, वैकुंठ का मालिक अलग है। तो कहते कबीर साहब जी कि जब लग आप वैकुंठ में जाना चाहते हो ना, तो वैकुंठ वासी जो वहाँ रहने वाला मालिक है तब तक उसके पास नहीं आप पहुँच सकते। किसी राजा के महल में पहुँच करके आप ऐसा नहीं हो सकता कि राजा के पास सीधा पहुँच जाएं, वहाँ भी बहुत प्रतिबंध होता है। सीधा उसके पास पहुँचने के लिए उससे कंटेक्ट जहाँ से करना पड़ता तभी आप पहुँच सकते हैं, नहीं तो बाहर खड़े रहेंगे आप, अंदर नहीं कोई जाने देगा। वो कहते हैं जब लग मन वैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक आपके हृदय में लालसा है वैकुंठ में जाने की, तब लग आपका प्रभु के चरणों में निवास नहीं होगा। भाव जो वैकुंठ का वासी है ना, वैकुंठ में रहने वाला मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, उसके चरणों में आपकी प्रीति अनुराग आपका नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तु आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। हम भगवान के पास जाकर के दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आम कहावत है कि हम ढेला दे करके ढेली देते हैं, हवेली मांगते हैं, 5 रुपए देते हैं दुनिया भर की, करोड़ों लोग मतलब करोड़ों रुपए का सामान हम मांगते हैं भगवान से। जैसे तो जैसा कोई अधिकारी होता वैसा उसको सामान मिलता है। गए तो दोनों ही थे, दुर्योधन में गया था भगवान कृष्ण के पास, अर्जुन में गया था, तो मांगने मांगने का अंतर हुआ कि नहीं? दुर्योधन को कहा था ना भगवान ने, भाई एक तरफ हम अकेले हैं बिना हथियार उठाए, अकेले केवल शस्त्र नहीं उठाएंगे, हमारे को लेना है, एक तरफ हमारी चतुरंगनी फौज है, तो आपको क्या चाहिए? मैं अकेला हूँ एक तरफ, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, एक तरफ मैं हूँ एक तरफ मेरी चतुरंगनी फौज है। तो दुर्योधन अधिकारी ऐसा था ना, उसने कहा मैं आपको लेके क्या करूंगा, अकेले वो भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो मेरे को आपसे क्या लेना, मेरे को तो फौज चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं, ले जाओ फौज। अर्जुन को कहा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमारे को फौज से कोई मतलब नहीं, हमारे को तो आप चाहिए। तो जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई ना, क्योंकि उन्होंने भगवान को मांग लिया है। हम भगवान को नहीं मांगते, हम भगवान से वस्तुएं मांगते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तुम वही मंदिर में बैठे रहो, आपको हम लेके नहीं जाएंगे, यही कहते हैं ना। जब घर में मंदिर बना लेते हैं तब भी घर के जहां पर हमारा जो कोना होता है ना, जो हमारे काम में नहीं होता, वहां भगवान को बिठाते हैं, सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी के नीचे बिठाते हैं कि नहीं? कहते हैं ये हमारे काम की नहीं है ये जगह ना, इसलिए जब भगवान को नीचे सीढ़ी के रखो, उसके ऊपर से जूता लेके हर रोज जाएंगे। यही तो कहते हैं ना महाराज जी, जो घर में बेकार जगह होती है वहां मंदिर बनाते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं कि तुम सीढ़ी के नीचे छिपे रहो, बाकी बाकी घर हमारा, आपकी ये सीढ़ी है, तो जैसा हम मांगेंगे वैसा ही मिलेगा ना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो अपने ठाकुर से कोई मांगता है ना वो दे देता है। तो जो ठाकुर को ही मांग लेता है, ये तो ठाकुर ही जब आ जाएगा ना तब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हम ठाकुर को नहीं मांगते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जब मांगने की बात आई तो कहते हैं कि मांग लो आपको क्या चाहिए। तो गुरु जी क्या कहते हैं? कहते हैं क्या मांगो किश थिर ना रहाई। कहते हैं प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, जो भी मांगता हूं वो रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपसे संसार की वस्तुएं नहीं मांग सकता। क्या मांगो की मैं मंगा आपसे, किस स्थिर ना रहाई, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, जो उपजो सो भिन्न है, कोई रहेगा नहीं। कह नानक थिर ना रहे जो बालू की भीत। जिस प्रकार बालू की दीवार बनाई होती है तो कभी रह सकती है वो? नहीं रह सकती ना। उसी प्रकार कहते हैं कि क्या मांगो किस थिर ना रहाई, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं हूं। तो कहते महाराज जी के आपको फिर चाहिए क्या? हर दीजे नाम प्यारी जियो, मेरे को नाम दीजिए, भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति और नाम जो है रहेगा ना वो जाएगा नहीं। तो हम मांगते हैं संसार की वस्तुएं, वो रहने वाली नहीं है। नाशवंत संसार को हम इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, क्योंकि वो रहेगा नहीं। तो जहां पर अध्यास की बात चल रही है, अध्यास हमारे को कब हो रहा है कि हम यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं ना जिस वस्तु को, उसी को अध्यास कहते हैं। सर्प को चांदी को हमने नहीं जाना, उनका जो रहने वाला स्थान था ना, चांदी जहां सीपी में रहती, सीपी को हमारे को विशेष रूप से पता नहीं चला, इसलिए अध्यास हो गया, इसलिए भ्रांति हो गई। रज्जू का पता नहीं चला विशेष रूप से, इसलिए भ्रांति हो गई। तो ये कहते हैं अध्यास जो है यही मूल कारण है। यदि हम अध्यास को समझ जाएंगे ना, तो फिर हमारा वेदांत श्रवण किया हुआ सब लग जाएगा। मूल जो है चिंतन हमने अध्यास का करना है। अध्यास क्या है? अज्ञान का कार्य है। जब तक अज्ञान की सिद्धि नहीं होती तब तक ज्ञान हो नहीं सकता। अज्ञान की हमारे को सिद्धि जब तक नहीं ना होती तब तक नहीं हो सकता। उस दिन हमने निवेदन किया था कि हम दुख को हटाने की कोशिश करते हैं, दुख के कारण को नहीं हटाते। जैसे शेर जो है कारण को पकड़ता है, कार्य को नहीं पकड़ता। कुत्ता किसको पकड़ता है? कुत्ता मारने वाले को नहीं पकड़ता, सोटी को पकड़ता है। शेर सोटी को कुछ नहीं कहता, वो सीधा आपके ऊपर झपकता है, वो कहता कारण ही समाप्त करो, कार्य तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को कारण की तरफ ख्याल नहीं जाता, हम कार्य की तरफ देखते रहते हैं। जो हमारे को दुख आता है उसकी दवाई लेते रहते हैं, दुख हुआ कहाँ से ये नहीं हम देखते। दुखस्य सुखस्य कोपि न दाता, कहते हैं कोई भी सुख दुख देने वाला दाता नहीं, हमारा अपना किया हुआ है। तो हम ये देखें ना कि हमारे को दुख हुआ कहाँ से। जब हमारे को हमारे किसी मित्र से दुख हुआ, या हम पति को पत्नी से दुख हुआ, पति को पत्नी से हुआ, तो उसको सोचना चाहिए ना कि इसका कारण क्या है। पत्नी ने आपको दुख नहीं दिया, ना पति ने ही पत्नी को दुख दिया है, ना किसी आपके मित्र ने आपको दुख दिया है, आपका अपना कारण है दुखी होना। उन्होंने आपको दुख नहीं दिया, वो तो जब आपके पास में रहते हैं तब भी आपको आप दुखी हो जाते हैं, जब दूर जाते हैं तब भी दुखी हो जाते हैं, तो कारण क्या हुआ? सिंपल सी बात है ना कि सिंपल सिंपल बातों पर भी हम लोग नहीं समझ पाते, सीधी सीधी बातें नहीं समझ पाते कि हमारे को किसी मित्र के रहते हुए दुख हो जाता है, हमारे पास है, जब दूर है तब तो होता ही है। कारण क्या हुआ, जितनी हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है उतना हम दुखी होते हैं। एक कोई बोलते हैं महात्मा की नेहो घटे नित मीत के जाए, हर रोज आप मित्र के पास बैठे रहते हो तो आपकी प्रीति कम हो जाती है। जिसके पास हर रोज हम लोग जाते हैं ना मित्र के पास, जब उसके पास रहते हैं ज्यादा तो हमारी प्रीति कम हो जाती है। जब हम थोड़ा दूर रहते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है, यह तो देखा होगा आपने। जिस मित्र को हम 6 महीने के बाद मिलते हैं, 2 साल के बाद मिलते हैं, कितना प्रेम होता है, लेकिन प्रेम तब तक होता जब तक वो हमारे पास नहीं आता। जब हमारे पास आ जाता है तो प्रेम घट जाता है, ये नहीं भी रहता नहीं रहता है लेकिन घट जाता है। कोई आपका लड़का कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, पहले आपको बाहर से फोन आया कि मैं इस टाइम आ रहा हूँ, इस दिन आ रहा हूँ, तो कितनी प्रीति होती है। आप देखते रहते हैं आ जाएगा कल आएगा, जब वो आ जाता है वो कहता है मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, तो आपकी प्रीति आपको लगता है अब तो आ गए, पास ही में आ गए, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब आप जाकर के एयरपोर्ट पर मिल लेते हैं उनको, सब खत्म, उडीक जो थी ना प्रतीक्षा वो खत्म हो गई। तभी तक आनंद है जब तक प्रतीक्षा है, जब प्रतीक्षा खत्म हो गई तो आनंद भी बस। इसी प्रकार है ना, दुख हमारे को तभी होता है हमारी आसक्ति जब तक रहती है, जब आसक्ति छोड़ देते हैं तो दुख भी नहीं रहता। तो इसका मतलब हम ही ने दुख बनाया हुआ था, दुख कहीं से थोड़ी आया था। इसलिए कहते हैं कि ये जिस सुख को आप प्रीति करते हैं ना, जिस सुख के लिए, उससे तो ब्रह्मा शिव जी भी डरते हैं। ये बात कही हुई है कबीर जी महाराज ने, जिस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। जिस विषय सुख से शिव जी और ब्रह्मा भी डरते हैं, उस सुख को हमने सत्य मान रखा है। विषय सुख से वो भी डरते हैं कि ये जो विषय का सुख है ये चला जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सुख को दुख अगला मनमुख बूझ ना होए। जहां पर आपको सुख लगता है उसके पीछे दुख आने वाला है, लेकिन हमारे को मालूम नहीं है। जो भी सुख आपको मिलेगा उसके पीछे दुख है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। सुख में इतना तदाकार हो जाते हैं कि दुख का पता ही तब चलता है जब आ जाता है, पहले नहीं पता चलता। वो सुख भी दुख रूप ही है, लगता नहीं है। तो ये क्या कारण है, इसका मूल कारण अध्यास है। जितना भी दुख होता है ना उसका मूल कारण जो अध्यास है। तो अध्यास कहा था कि 2 प्रकार का है, एक अर्थाध्यास, दूसरा ज्ञानाध्यास। वैसे जो 6 प्रकार का बताया था उसमें झगड़े में पड़ेंगे तो समझ में आने वाला नहीं कुछ भी। जो 6 प्रकार का बताया था ना महाराज जी, वो तो पढ़ने वालों के लिए है, आम वाले सुनने वाले लोगों के लिए नहीं है वो। उनको केवल धर्मी का अध्यास, केवल संबंधाध्यास, इससे कुछ लेना नहीं आपको। ये तो पढ़ने वालों के लिए होता है। 2 ही प्रकार का अध्यास आप समझ लीजिए कि एक ज्ञान का अध्यास, दूसरा उसके वस्तु का अध्यास। जैसे सीपी में जो कहते हैं सीपी में चांदी का अध्यास हुआ ना, उसको समझ लीजिए। एक उसमें चांदी भास रही है, चांदी का हमारे को भ्रम हुआ, और दूसरा चांदी का ज्ञान हुआ यह चांदी है। ये दोनों झूठे हुए। जब चांदी वहां नहीं है तो चांदी का ज्ञान कहाँ से आएगा। रज्जू में जब सर्प ही नहीं है, एक तो सर्प का ज्ञान हुआ झूठा, और दूसरा सर्प का ज्ञान, एक सर्प का एक सर्प के ज्ञान का, दोनों का हमारे को भ्रम हो गया है, दोनों ही नहीं है। जब तक सर्प भासता है तभी तक सर्प का ज्ञान है, जब सर्प नहीं रहेगा तो सर्प का ज्ञान भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए। फल कारण फूली बनराए, बनराए मतलब वनस्पति, जो वनस्पति है ना ये किस लिए फूलती है, इसमें पत्ते निकलते हैं फूल निकलते हैं किस लिए, इनका कोई मतलब थोड़ी होता है, फल के लिए होता है, क्योंकि इसके बाद में उसमें फल आएगा। तो कहते हैं गुरु महाराज की फल कारण फूली बन रहा है, वनस्पति फल के लिए फूली है, वो फल के सब साधन है। जब उसमें फल आ जाता है, फल लागा तब फूल बिलाए, जब फल लग जाता तो फूल कहाँ गया, फल के अंदर ही चला गया वो। तो इसी प्रकार ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाते कर्म है नाश। जितना हम कर्म करते हैं निष्काम कर्म भक्ति उपासना, किस लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशया शीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। ये कहते हैं बाद में ऐसी हालत होती है, विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे हृदय में ग्रंथि पड़ी है ना, चित जड़ की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा कहते हैं गोस्वामी जी कि चित्त और जड़ की जो ग्रंथि है ना, गांठ पड़ गई, कि जे जड़ है जे चेतन है, ये जो ग्रंथि कहते हैं गांठ पड़ गई हमारे अंदर। वो कहते हैं यद्यपि मृषा, गांठ जो पड़ी हुई है झूठी है, यद्यपि छूटत कठिन नहीं, फिर भी कहते छूटती नहीं है। तुलसीदास जी मारे कहते हैं छूटती बहुत कठिन है तो झूठी, लेकिन झूठी भी गांठ हमारे से नहीं छूटती। तो ये अध्यास का कारण है पूरा। तो अध्यास को समझ लेंगे ना जब, तो फिर हमारे को भ्रांति नहीं होगी। भ्रांति या अध्यास तो एक ही बात है। तो समझना तो इतना ही है कि सत चेतन आनंद हमारा स्वरूप है, और जो ब्रह्म है, जो परपंच है, ये कैसा असत है, जड़ है, नाशवंत है, कार्य है, इसको ही हमने समझना है। इसको इसी से देख करके आप बताते हैं, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास कैसे होता है, ये प्रश्न है महाराज जी। 139 नंबर है, 139 नंबर प्रश्न है, आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास कैसे होता है। समझ गए, आत्मा और अनात्मा का दोनों का आपस में अध्यास हो जाता, ब्रह्म हो जाता है ना। आत्मा को हम जड़ मानने लगते हैं और जड़ को हम आत्मा मानने लगते हैं, ये तो आपने देखा है ना मोटा, क्योंकि ये जड़ है, इसको अनात्मा बोलते हैं, जो आत्मा नहीं है उसको बोलते हैं अनात्मा। समझ गए, जो शरीर है ना हमारा, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये अनात्मा है। इसका और सचेत आनंद जो आत्मा, उसका आपस में कहते अध्यास कैसे, एक दूसरे के साथ एक ही वो कैसे हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग लेकिन एक ही जैसे हमारे को भासने लगते हैं। हम आत्मा को अनात्मा मानने लगते हैं और अनात्मा को आत्मा मानने लगते हैं, ये कैसे होता है। उत्तर देते हैं, सचेत आनंद और अद्वैतपना ये चार विशेषण आत्मा के हैं। आत्मा कैसा है, सत है, चित है, आनंद है, अद्वैत स्वरूप है, ऐसा है ना आत्मा। सत का अर्थ समझते हैं, सत कहते हैं सच को, सच बोलते हैं हम लोग। सत का अर्थ होता है जो तीनों कालों में नष्ट नहीं होता, उसको सत कहते हैं। और चित कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश है उसको चित कहते हैं, और जो सुख स्वरूप है उसको आनंद कहते हैं। जिसके जैसा और कोई नहीं है, अखंड है, उसको अद्वैत कहते हैं। हमारा जो आत्मा स्वरूप है वो सत्य है, तीनों कालों में उसका कभी नाश नहीं होता। हम भूत में भी थे, हम अभी वर्तमान में भी हैं, हम आगे भी रहेंगे। तीनों कालों में हम एक जैसे रहते हैं ना, बदलते नहीं हैं। जैसे हम लोग बाल्यावस्था में भी ऐसी हमारा स्वरूप था, वृद्धावस्था में भी वैसा रहता है, मध्य में जब जवानी होती है तब भी हमारे में अंतर नहीं पड़ता, शरीर में पड़ जाता है अंतर। तो जो अनात्मा है वो कैसा, वो बदलता रहता है, असत है, असत है ना, वो सत तो बदलता नहीं है, वो असत है। ना सतो भाव्यते विद्यतो, ये कहते ना, ना विद्यते सता भावो, ना भावो विद्यते सता। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता। असत किसी भी समय में विद्यमान नहीं रहता, और सत किसी भी समय में लोप नहीं होता। इतना अंतर है। तो जो प्रपंच है यह असत है, जो दिख, जो हम कह रहे ना हमारे को दिख रहा है प्रपंच, ये कहते हैं कि ये असत है। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं हुआ, बात वही चलती, कभी भी नहीं हुआ तो हमारे को दिखता क्यों है? जो वस्तु होती नहीं वो दिखनी ना चाहिए। तो जो उत्तम जिज्ञासु हैं उनके लिए है कि जो संसार है ये असत है, कभी नहीं हुआ, बंदिया का पुत्र कभी ना हुआ है, ना कभी किसी ने देखा है। जो बांझ का पुत्र है ना, बांझ स्त्री का जो पुत्र है ना, वो कभी हुआ है, ना किसी ने देखा है, है ही नहीं वो। जो सया होता, खरगोश होता ना, उसके सींग कभी किसी ने देखे हैं? खरगोश के सींग होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ना कभी किसी ने देखे हैं। क्यों? असत है, कभी हुआ ही नहीं वो। इसी प्रकार जो उत्तम जिज्ञासु हैं उनके लिए ये उपदेश है कि ये प्रपंच असत है, कभी नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उनको दिखता भी नहीं है, उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि है ही नहीं, मैं ही हूं और कोई है ही नहीं है। उनको दिखे, दिखता ही नहीं उनको ना। दिखने का मतलब क्या हुआ? यानी कि आंखों से नहीं दिखता, आंखों से तो दिख ही रहा है, लेकिन आंखों से भी वो अपने आप को देख रहे हैं। उनको अलग नहीं दिखाई पड़ता कि ये कार है, ये कोठी है, ये आदमी है, ये स्त्री है, ऐसा उनको नहीं है, उनको ऐसा नहीं है। उनको दोनों में भेद नहीं भासता, वो सब जगह अपने आप को देखते हैं। सर्वभूतेषु चात्मा, वो सभी भूतों में अपने आप को देखते हैं, उनके लिए असत है। हम लोग यदि असत को नहीं समझ सकते, मिथ्या तो समझ ही सकते हैं ना, असत को समझना तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हुआ ही नहीं, क्यों? हमारे को दिख रहा है और अलग अलग रूप से दिखता है। कार को हम कार देखते हैं, कोठी को कोठी देखते हैं, स्त्री को स्त्री देखते हैं, पुरुष को पुरुष देखते हैं, तो हमारे लिए असत कैसे हुआ? असत का मतलब दिखे ही नहीं, दिखता ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी जब जा रहे थे तो उनको थोड़ी मालूम है कि वो कहते हैं असत है, हुआ ही नहीं है, इसलिए उनको देख करके गोपियों ने कपड़े नहीं पहने। स्नान कर रही थी ना गोपियां रास्ते में, तो जब निकले सुखदेव जी निकले तो नग्न थे, नग्न रहते थे वो, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। उनको देख करके भी उनको लज्जा नहीं आई, नहीं तो स्त्री पुरुष को, स्त्री को मालूम होना कोई पुरुष आ रहा है तो वो उसी समय अपने आप को छिपा लेती है ना। वो भी ऐसे ही स्नान कर रही थी कपड़े उतार के, लेकिन उनको उनसे आने से कोई लज्जा नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर संसार नहीं है, सुखदेव जी के अंदर संसार नहीं है। व्यास जी आए तो उन्होंने कपड़े पहन लिए, पीछे व्यास जी तो आ ही रहे थे, व्यास जी पीछे पीछे सुखदेव जी को बुलाते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने कपड़े पहन लिए, तो व्यास जी को खुद ऐसा होगा कि ये क्या हुआ, अभी सुखदेव जी निकल के गए हैं तो इनको कुछ नहीं हुआ, मेरे आने से क्या हुआ। और उनके पिता हैं व्यास जी, ऐसी बात तो नहीं, सुखदेव जी के पिताजी हैं। ये बात कई बार वहाँ उठी है, हमारे काशी में झगड़ा भी हो जाता था, लोग कहते ऐसे व्यास जी के ऊपर दोषारोपण करते हैं आप। तो हम पढ़ रहे थे स्वामी जी के पास, वो कहते ऐसा नहीं महात्मा जी, लड़ना नहीं चाहिए, ना हम सुखदेव जी की स्तुति करते हैं ना व्यास जी की निंदा करते हैं। कहते दो प्रकार के महात्मा होते हैं, तत्व चिंतक होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो संसार को असत मानते हैं, एक ऐसे होते हैं जो संसार को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या मानने वालों के लिए संसार होता है लेकिन मिथ्या होता है, मिथ्या मानते हैं वो, होता तो है लेकिन मिथ्या, वो कहते प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति तो होती है ना, मिथ्या रूप में भले होती, प्रतीति होती है, भासता है ना उनको, जैसा है वैसा दिखता है, लेकिन वो मिथ्या मानते हैं कि हुआ, ये केवल दिख रहा है, जैसे सर्प दिखता है ना रज्जू में, ऐसे दिखता है लेकिन है नहीं, मध्य में जरूर दिखता है ना, पहले था ना बाद में रहता है। हम लोगों को ऐसा ही निश्चय करना चाहिए अभी कि जो दिख रहा है संसार ये दिखता अवश्य है परंतु ना पहले था ना बाद में रहेगा, मध्य में भासता है। जो वस्तु मध्य में होती वो सत्य नहीं होती, जो तीनों कालों में रहती वो सत्य होती है। तो संसार हमने देखा भी है कि पहले नहीं था, कौन संसार, ये संसार तो चलता ही आ रहा है। जो हम लोगों के साथ संबंध रखने वाले हैं ना, वो पहले नहीं थे, मध्य में भासते हैं हमारे देखते हुए वो चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं ना हुए। चप्पन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती धा से जानी चल गए। या कहते हैं जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना हुआ, जो शरीर हमारे साथ उत्पन्न हुआ है वो भी नहीं हुआ, रहा नहीं है। ये शरीर को ही देख लो आप, ये उत्पन्न तो हमारे साथ में हुआ है लेकिन रहता नहीं है। साथ में होने का मतलब क्या हुआ, साथ में आया है कहते रहता नहीं है, तो हम अपने आप को फिर क्या मानेंगे, हम इस शरीर के साथ आए हैं ना, ऐसा ही मानेंगे ना, ऐसा ही मानेंगे कि जीवपना जो हमारा था ना जीवपना, ये महाराज जी बात तो बहुत सरल लगती है कि जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना होया, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है कि जो शरीर हमारे साथ उत्पन्न हुआ वो नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा शरीर के साथ जन्म हुआ है, ऐसा ही मानेंगे ना, तभी तो मानेंगे जो शरीर आपके साथ उत्पन्न हुआ वो रहा नहीं। तो यदि हमारा जन्म हुआ शरीर के साथ तो हमारा मरण भी हो जाएगा, उसका अर्थ ही नहीं है। कहते हैं जो शरीर आपको जीवपने के जीव मानने से जो शरीर आपको प्रतीत हो रहा है ना, जिस दिन अपने आपको जीव माना उसी दिन से आपको शरीर भासता है। जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना होया, दो अर्थ लगते हैं, एक तो आपके देखते हुए संग नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने संग छोड़ दिया, संग था ही नहीं उसका। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि मैं सच्चिदानंद हूं तो सो भी संग ना होया, संग था ही नहीं, संग भ्रांति थी वहां। जो तन उपजा संग ही, कहते वो संग भ्रांति के कारण भासता था आपको, आपने शरीर को संगी मान रखा था ना अपना, तभी तो आपको, आपने कहा मेरा शरीर है, जिस दिन आपको पता चला तभी आपने कहा मेरा शरीर है, जब आप उत्पन्न हुए तब आपने ऐसा नहीं बोला, जब आप पैदा हुए ना तब तो आपने ऐसा नहीं कहा कि मेरा शरीर है, उस समय आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं थी, कुछ पल के लिए कुछ दिनों के लिए आपने ऐसा नहीं बोला कि ये मेरा शरीर है, नहीं ना बोला, जब हम पैदा होते हैं कब ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते, दो चार महीने तक भी नहीं बोलते कि ये मेरा शरीर है या ये मेरा माता पिता है, ये हमने नहीं बोला, क्योंकि उस समय आपने माना नहीं था इसको। जिस समय आपके ऊपर आरोपण किया गया ना, थोप दिया कि ये आपका शरीर है, तब आप मानने लगे। जैसे कहते ना कोई शेर का छोटा सा बच्चा जो ना भेड़ों में मिल गया ना, वो भेड़ चराने वाले ने उसको अपने बीच में मिला लिया, तो भेड़ों के साथ मिलने से अपने आप को भेड़ मानने लगा, उसको भूल ही गया कि मैं शेर हूं, छोटा था ना वो, तो उसके बकरियों में आ गया तो बकरी भेड़ ही मानने लगा अपने आप को। जब उसको शेर का कहीं मिलाप हुआ तो शेर ने बतलाया कि तुम बकरी नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो। तो हमारे को क्या हुआ, हम लोग भी भेड़ों में मिल गए ना, जब हम उत्पन्न हुए उसके बाद हमारे को हमारी माता ने बतला दिया कि ये तेरा पिता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है। पहले थोड़ी हम उनको जानते थे, माना नहीं था हमने, माता पिता का कहने से मान लिया हमने, जब मान लिया तो हम अपने आप को वही मानने लगे ना। जब हमारे को फिर महात्मा ने बतलाया भी तेरा मामा चाचा ताया कोई नहीं है, तो फिर हम क्या हो गए, सच्चिदानंद हो गए। पहले हम किसी के कहने से हमने मान लिया, वैसे नहीं हम मानते थे, किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। हाँ जी महाराज, किसी के कहने से हमने अपने आप को मान लिया ना, उसका संबंधी मान लिया, पति मान लिया, पत्नी मान लिया, तो जब फिर किसी ने बतला दिया तब फिर हमने छोड़ दिया। जब किसी ने हमारे को कह दिया तब हमने छोड़ दिया, जब किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया। इसका मतलब हम कितने के समझदार आदमी हैं, जो हमारे को कोई कह देता हम उसी को मान लेते हैं, जो जो हमारे को बतलाता जाता ना संसार में हम उसी के साथ उसको मानना शुरू कर देते हैं। ये आपका मित्र है, ये आपका भाई है, ये आपका पिता है, ये आपका माता है, ये सब हमारे को पहचान हमारे माता पिता कराते हैं, एक दूसरे के साथ बांधते हैं ना वो। बाद में जब महात्माओं के पास जाते हैं तो महात्मा अकेले अकेले को हमारे को रटा रटा के छुड़ाते हैं कि ये आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं, ये भी आपका नहीं है। लेकिन जितना मानना सरल है उतना छोड़ना सरल नहीं है, मानना तो बहुत सरल है। एक बार किसी ने बोल दिया तो हम कभी भी उसको पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ पाते। जैसे हमारे को बताया था हमारी माता ने कि जो आपका पिता है तो हमने उसको छोड़ा ही नहीं कभी। वही कोई हमारे को कह दे कि नहीं ये आपका पिता नहीं तो हम मानने के लिए तैयार होंगे क्या? कभी भी नहीं होंगे। भले महात्मा भी कह दे तब भी नहीं हम मानेंगे कि ये हमारा पिता नहीं है। लेकिन कहते हैं वेद की पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है। जब ज्ञान होता है ना तब फिर माता पिता कुछ नहीं रहता, क्योंकि माता पिता इस शरीर का है, शरीर का तो रहेगा ही, वो शरीर का तो माता पिता रहेगा, लेकिन हमारा नहीं है ना ताते ना माते ना जाते ना पाते। कहते हैं महाराज जी कि ना आपका तात है ना मात है ना जात है ना पात है, कुछ भी नहीं है, ना आपका कोई रूप है ना रेख है, रूप ना रंग ना कुछ भी नहीं है ना, रूप ना रेख ना रंग किस त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, आप तीनों गुणों से भिन्न हो अलग हो। जे रूप और रंग और जाति पाति सब तीन गुणों की बनाई हुई है, हम इससे अलग हैं। तो ये सब अध्यास है, ये सब भ्रांति है। दो प्रकार का जो अध्यास हो रहा है ना वो हमारे को वस्तु का और वस्तु का ज्ञान, जैसे मिथ्या जो सर्प है उसका हमारे को भ्रम हो गया, तो जब सर्प का भ्रम हुआ साथ ही सर्प के ज्ञान का भ्रम हो गया, उसी समय हमने बोल दिया यह सर्प है। तो सर्प का और सर्प का ज्ञान दोनों को अध्यास कहते हैं, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। जो जीव है ना, जीवपना हमारा, जो चिदाभास जिसको हम बोलते हैं चिदाभास या जीव, उस कहते हैं जीव को अनात्मा में आत्मा के अध्यास होते कैसे हैं। जैसे चिदाभास को स्थूल शरीर में कैसे अध्यास होता है, जो हमारा यह शरीर है ना इस शरीर में हमारे को अध्यास कैसे होता है। वैसे तो समझ रहे हैं, समझ में नहीं ना आएगा, अकेले अकेले को समझेंगे तब समझ में आएगा। इस शरीर में हमारे को अध्यास कैसे होता है, ये कहते हैं कि इस शरीर में हमारे को अध्यास ऐसे होता है कि मैं इस नाम वाला हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं रामलाल हूँ, ये होता है ना हमारे को। इस स्थूल शरीर में अध्यास ब्रह्म कैसे हुआ, ये जो नाम है ना इस शरीर का, माता पिता ने दिया है नाम इस शरीर को, हमारे को नहीं दिया, इसकी पहचान करने के लिए नाम दिया हमने। जैसे मकान को बाहर हमने लिखा ना निर्मल वेदांत निकेतन लिखा है ना बाहर, वो किसका नाम है, मकान का नाम है ना, मकान का नाम है वो। तो जो हमारा श्यामलाल रामलाल नाम है वो किसका है, हमारा कि शरीर का, शरीर का है कि नहीं। लेकिन हम कब किसी को कहते हैं कि मेरा शरीर श्यामलाल है, ऐसा नहीं किसी को बोलते। जब भी कोई परिचय पूछता कहते मैं श्यामलाल हूँ, तो हम परिचय तो शरीर का देना था दे रहे हैं, अपना अध्यास हुआ कि नहीं हमारे को, भ्रांति हुई कि नहीं हमारे को, हमने अपने आप को श्यामलाल माना है। जब हम मर जाएंगे तो श्यामलाल नाम कहाँ जाएगा, मर जाएंगे मतलब शरीर चला जाएगा, तो शरीर के साथ ही नाम भी समाप्त हो जाएगा। तो हम तो शरीर के बाद में भी रहते हैं, कैसे रहते हैं बाद में, फिर आप कहेंगे कि बाद में हम रहते हैं किसी को क्या मालूम है, शरीर के बाद में हम रहते हैं इसकी कोई निशानी है। आपने कभी सोचा है कि शरीर जब चल जाएगा तो हम रहेंगे, इसकी क्या निशानी है कि हम रहेंगे, कभी सोचा है कि नहीं, कोई बता सकता है। शरीर के मरने के बाद भी हम रहते हैं इसमें कोई उदाहरण है,
उठता है स्वामी जी।
हाँ,
जब वो क्रिया कर्म करते हैं, उसके पिंड दान करते हैं, उसके नाम के कोई अर्पण करते हैं, तो वो है तो करते हैं, अगर हो ही ना तो करने की
यही बात है, यही तो समझना है कि यदि हम हैं तभी हम कहते हैं कि उसके लिए पूजा पाठ कराओ, जो चला जाता है ना इसका मतलब वो है अभी,
है अभी, अभी।
और यदि ना होता तो पूजा पाठ कराने की जरूरत ही नहीं है।
क्या?
जब तक शरीर है तब तक हम ऐसा नहीं मानते हैं। दूसरा कह रहा है पूजा पाठ कराओ, लेकिन महात्मा कहते मेरा मेरे होते हुए हो गया। कहते हैं कि नहीं जो संन्यास ले लेते हैं वो कहते हैं हमारे को कहीं कुछ पूजा पाठ हमारा कराने की जरूरत नहीं है, भले हम उनके बाद में करा देते हैं लेकिन वो होता नहीं उनका। सन्यासी का श्राद्ध नहीं होता, कभी श्राद्ध नहीं होता सन्यासी का, सन्यासी का किसी का श्राद्ध नहीं होता, क्योंकि जब उनको संन्यास देते हैं ना सभी उनके कर्म गंगा के किनारे बैठ के करा देते हैं, अंतिम संस्कार भी वहीं करा देते हैं। वो कहते हैं इनका अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं है, जब भी इनका शरीर छूटे इनको उठा के गंगा में
फेंक दो, किनारे पर बैठकर इसको संन्यास दिया जाता है।
हाँ, तो इसलिए कहते हैं वहाँ जो संन्यास देते हैं तो पूरा क्रियाकर्म वहीं कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल कर देते हैं, उनको निश्चय करा देते हैं, वो ऐसा मान लेते हैं वहां पर कि अब हमारा कुछ करना बाकी नहीं बचा, केवल करा ही नहीं देते, वो मानते हैं ऐसा। संस्कार तो हमारा भी होता है, हमारे भी तो पंडित जी कराते हैं ना, जन्म जब हमारा होता तब भी कराते हैं, जब हमारा जो भी संस्कार होते हैं ना हमारे, वो पंडित जी लोग कराते हैं कि नहीं, लेकिन हम उसको निश्चय नहीं कर पाते, करा तो देते हैं वो तब भी हम निश्चय नहीं कर पाते। जब वो हमारे को गायत्री मंत्र देते हैं, हमारी चोटी रखते हैं, ये सब होता है ना, उसके बाद में जब हम दूसरे संस्कार में जाते तो पहले वाला तो हमारा समाप्त करते हैं कि नहीं, तब भी हम कहाँ छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, जो एक बार हमने मान लिया उसको छोड़ते ही नहीं है। तो महात्मा लोग छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ नहीं पाते, इसके साथ हमारा अटैचमेंट जो अध्यास होता है ये होता है कि मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, इसलिए ये जो हमारा अध्यास है, हम रामलाल श्यामलाल कोई नहीं है, हम नहीं है, यह सब इसका नाम है। वो भी माता पिता ने तब रखा जब उनको ये शरीर दिखा है, पहले नहीं, जब ये शरीर माता पिता के सामने आया तब इसको देख करके उन्होंने नाम रखा है, पहले थोड़ी था, जब उत्पन्न हुआ तब भी नहीं था, भले 2 सेकंड के लिए नहीं था, भले 1 घंटे के लिए नहीं, तो तब पहले नहीं था नाम, जब भी उत्पन्न हुआ तभी नाम पीछे से आना चाहिए ना साथ में, नहीं आया। यदि होता, यदि हम श्यामलाल होते तो पीछे से जब भी हम उत्पन्न हुए तब कहते भी श्यामलाल उत्पन्न हुआ है, ऐसा क्यों नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि श्यामलाल उत्पन्न हुआ है, बच्चा उत्पन्न हुआ है ना, तो बच्चा तो सामान्य है, वो किसी का नाम नहीं है, लेकिन 1 घंटा बाद में 2 घंटा बाद में नाम रखा है हमारा, तो किसका नाम हुआ, शरीर का हुआ ना, हमारा नहीं है, शरीर का नाम रखा माता पिता ने, तो शरीर भी झूठा, शरीर का नाम भी झूठा, लेकिन दोनों का हमारे को अध्यास हो गया, वस्तु का और वस्तु का ज्ञान भी हो गया, वस्तु का भी ज्ञान हुआ और वस्तु का ज्ञान भी हो गया, वस्तु का दोनों का अध्यास हो गया। ये कहते हैं कि मैं अमुक नाम वाला हूं और इसके जो धर्म है ना जन्म मरण आदि, ये धर्म वाला मैं हूं, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, दोनों प्रकार का हमारे को अध्यास हो गया स्थूल शरीर में। ये अध्यास कहाँ होते हैं, चिदाभास को स्थूल शरीर में ऐसे अध्यास होते हैं, जीव को इसमें ऐसे अध्यास होते हैं कि मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं जन्म मरण वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार हमारे को इस शरीर में अध्यास होता है। तो पहले तो हम स्थूल शरीर से हटेंगे तब आगे जाएंगे, मूल तो हमारा अध्यास इसके साथ हो रहा ना पहले बाहर, तो इस शरीर को हम कैसे छोड़ेंगे, शरीर को छोड़ने का मतलब कि इससे हमारा जो संबंध है वो कैसे हटेगा, जानेंगे कि ये शरीर जो है कहाँ से आया है। तो पहले शुरू में बतलाया था कि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो 5 तत्व हमारे नहीं है, ना हम 5 तत्व है, ना 5 तत्व हमारे हैं, ना हम आकाश हैं, ना आकाश हमारा है, ना हम वायु हैं, ना वायु हमारा है, ना हम अग्नि हैं, ना अग्नि हमारा है, ना हम जल हैं, ना जल हमारा है, ना हम पृथ्वी हैं, ना पृथ्वी हमारी है, हम 5 तत्व भी नहीं हैं, 5 तत्व हमारे भी नहीं हैं। वो तो अज्ञान का, अविद्या का कार्य है ना वो तो। तो हम लोग ये जो शरीर है इसके साथ फिर क्यों बंध जाते हैं, क्योंकि तो यह पांच तत्वों का बना हुआ है। जब संसार की किसी वस्तु को हम देखते हैं कि ये हमने नहीं बनाई तो हम उसको अपनी नहीं ना मानते, नहीं ना मानते अपनी। जिसको हम बनाते हैं उसको अपनी मानते हैं, तो ये तो ना तो हमने बनाया है इसको, इसको हमने थोड़ी बनाया है। मोटा भी मान लो तो इसको हमने बनाया नहीं, तब भी हम अपना मानते हैं इसको। संसार में जो वस्तु हमने नहीं बनाई उसको हम अपनी नहीं मानते। हाँ यदि बनाई हुई किसी की खरीद लेते हैं तब भी मान लेते हैं हमारी है। सब चीज़ें तो हम नहीं बनाते हैं लेकिन खरीद लेते हैं ना, तब हम अपनी मानते हैं। तो ये हमने बनाया भी नहीं है, खरीदा भी नहीं है, ना हमने ये बनाया है ना खरीदा है, तब भी हम अपना मानते हैं। तो झूठे हुए कि नहीं हुए, ना हमने बनाया है इसको ना हमने खरीदा है। हमारे को तो कहते हैं आपको मिला है, आपने खरीदा नहीं है, दिया है भगवान ने। ये तो कभी नहीं ना कहा कि आपने खरीदा है। कहते हैं भगवान ने कृपा करके आपको ये शरीर दिया है, तो जो किसी को दे देता है ना उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए ना। थोड़ी देर के लिए मानो किसी ने हमारे को गाड़ी दे दी है ना, तो उसने ये नहीं कहा कि आप इसके ऊपर अपना रजिस्ट्री करा लोगे जो आपकी है, वापस तो करनी पड़ेगी ना। दी है उन्होंने हमारे को कि तुम इसकी इसको यूज कर सकते हो। तो भगवान ने हमारे को शरीर दिया है, किस लिए दिया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसलिए दिया है ना। दुर्लभ शरीर है लेकिन साधन धाम, ये साधन है, ये मुक्ति का धाम है। उन्हें कहा इसके द्वारा आप अपने आप को जान लो, तो हमारे को जूझ करने के लिए दिया है कि इसके ऊपर बैठ करके आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको गाड़ी हमारे को वापस करनी पड़ेगी। यदि हम वहां जा करके गाड़ी नहीं छोड़ते तो फिर हम हमारे को क्या कोई समझेगा, तो क्या बताएगा। हमको कहा भगवान ने कि ये आपको दिया है हमने, लेकिन इसने दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जो कहते इस शरीर को प्राप्त करके नहीं जानता है ना, सो प्रत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी ही मिथ्या दोष लगाए। वो फिर जिसने दिया है ना उसके ऊपर दोष लगाता है। जब हम किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ना, तो जिसने दी होती उल्टा उसके ऊपर दोष लगाते हैं, ये तो हमारी है, जो तो झूठ बोलते हैं हमारी है। तो हम कहते हैं शरीर हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है। सब लोग कहते हैं कि आपको दिया है, तो आप इसके साथ चिपक मत जाओ। इसको आपके पास है तो आप इसमें रहिए जरूर। मकान हमारे को दे दिया किराएदार, किराए पे ले लिया हमने, वो कहते रहिए इसमें, लेकिन इसकी मालकियत मत जमाइए। जब ऐसा करेंगे तो हम आपसे ले लेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर रहते हैं, इसमें रहते हुए हम अपना चिंतन कर सकते हैं, इसलिए हमारे को दिया है। इसके साथ चिपकने के लिए नहीं दिया, हम लोग ने इसको मान लिया अपना, इसलिए हमारे को दुख हो रहा है। जब ये हमारे के हमारे से छुड़ाएगा जिसने दिया है, तब हमारे को कष्ट होगा। यही तो हो रहा है कि हमारे को दिया गया है तो हम इसमें रह करके साधन के लिए दिया है, तो साधन करेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हम साधन नहीं करते, हम इसी को कब्जा करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो हमने अपने आप को यही मान लिया, शरीर ही मान लिया। कहते आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग हैं। ये शरीर जब नहीं रहता तब भी आप रहते हैं, इसलिए आपके लिए पूजा पाठ कराया जाता है कि आप हैं। फिर उसके बाद ये शरीर है जो इसमें ऐसा अध्यास होता है कि मैं अमुक नाम वाला हूं और मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये स्थूल शरीर में ऐसा अध्यास होता है। तो क्षत्रियत्व इसमें कहीं नहीं मिलता, ब्राह्मणत्व इसमें कहीं नहीं मिलता। गोरा कालापना हमारे में नहीं है, शरीर में है। और ये भी शरीर जो है जब मर जाता तो पीला हो जाता है, या वैसे जीते हुए भी कई बार पीला हो जाता है। रंग बदलते रहते ना इसके, शरीर के बदलते रहते, हम तो नहीं बदले। शरीर गोरा हो गया काला हो गया, हम थोड़ी बदले हैं। मैं तो हमारा वैसा ही रहा, मैं गोरा मैं काला, मैं कोई बदलाव नहीं आया। शरीर में बदलाव आ रहा है, लेकिन हमने अपने आप को हमारी मैं को कभी काला के साथ जोड़ दिया, कभी गोरा के साथ जोड़ दिया। शरीर पतला हो गया तो हमने अपनी मैं को पतला के साथ जोड़ दिया, मैं पतला हूँ, शरीर पतला हुआ है, शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ। तो इसलिए ये हमारे को अध्यास हुआ इस बाहरले शरीर में। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसमें हमारा क्या अध्यास होता है? जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसमें हमारे को क्या अध्यास होता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, ये होता है ना अध्यास। मैं विद्वान हूँ, मेरे में विद्या है ना। विद्या किसका काम है? सूक्ष्म शरीर का काम है। और रहती विद्या कहाँ? अंतःकरण में। अंतःकरण में रहती है ना। तो हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, हम अपने आप को गुणवान मानते हैं, हम अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं। कर्ता भोक्ता जो कर्म है ना, जो धर्म है, वो अंतःकरण का है, हमारा नहीं है। जो विद्या रहती है या अविद्या रहती है, अंतःकरण में रहती है, हमारे में नहीं रहती। सुख दुख का जो अनुभव है वो अंतःकरण करता है, हम नहीं करते। लेकिन हम अपने आप को सुखी दुखी मानने लगते हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर में अध्यास हो गया, भ्रम हो गया। हमने अपने आप को अंतःकरण भी मान लिया, अंतःकरण के धर्म भी मान लिया, दोनों ही अपने आप को मान लिया। हमने पीछे भी बताया था कि पहले तो केवल हमारे को संबंध का अध्यास होता है, परंतु संबंध सहित संबंधी का अध्यास हो जाता है। केवल कई बार हमारे को धर्म का अध्यास होता है, इंद्रियों में हमारे को धर्म का अध्यास होता है। इंद्रियां जो हमारी इंद्रिय हैं हमारे, जैसे आँख जो है ना वो देखती है, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, रसना का काम है रस ग्रहण करना, इसका केवल हमारे को धर्म का अध्यास होता है। हम कहते हैं मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। जो धर्म था ना देखना, उसको हमने अपने आप ने मान लिया। लेकिन हमने अपने आप को आँख नहीं माना, कान नहीं माना। धर्म तो हमने अपने आप को मान लिया, लेकिन धर्म ही नहीं माना। उसके धर्म को हम अपने आप में ले लिया। देखना उसका काम था, कहते मैं देखता हूँ, लेकिन ये नहीं हम कहते कि मैं आँख हूँ। तो हमने आँख को तो नहीं माना, आँख के काम को अपना मान लिया। कान को हमने भी, हम नहीं कहते मैं कान हूँ, लेकिन सुनना मेरा काम, कहते मैं सुनता हूँ। जब हम आँख नहीं तो सुनना भी हमारा काम, देखना भी हमारा काम नहीं है। जब हम कान नहीं है तो सुनना हमारा काम नहीं है। सुनना कान का काम है, उसका धर्म है सुनना। आँख का काम है देखना। जब हम अपने आप को आँख नहीं मान ले, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा प्रयत्न करें कि देखते भी हम नहीं है, देखती भी आँख है। हम तो आँख को जानते हैं कि आँख देखती है कि नहीं देखती। उल्टा हो गया कि नहीं काम? जब हमारी हमारे कान नहीं सुनते, तब भी हम जानते हैं, कह देते हैं कि आज हमारे कान सुन नहीं रहे। तो फिर हम सुनते हैं कि कान सुनते हैं? जब हमारे को ये मालूम है भी आज कान हमारा एक कान जो है इसे सुनता नहीं है, तो फिर जब सुनता है तब हम कहते हैं कि मैं सुनता हूँ। जब नहीं सुनता तब भी जानते हैं कि नहीं, कान नहीं सुन रहा, हमारा कान गड़बड़ है, ये भी हमारे को मालूम है। तो हमने धर्मों का अध्यास अपने आप में मान लिया। ये है धर्मी का अध्यास, धर्म का अध्यास। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म दोनों को हमने अपने आप में मान लिया। ये धर्म सहित धर्मी का अध्यास है। अंतःकरण का काम है कर्ता भोक्तापना, सुखपना दुखपना। सुख दुख उसके धर्म है, और सुखी होना दुखी होना उसका काम है। हमने धर्मों को भी अपने आप में माना, धर्मी को भी माना। हम अपने आप को अंतःकरण मानने लगे, और अंतःकरण के धर्म ही अपने आप में मानने लगे। मैं कर्ता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी हूँ, ये सब हमने अपने आप में मान लिए। ये हमारे को सूक्ष्म शरीर में ऐसा अध्यास हो जाता है। और कारण शरीर में कैसे अध्यास होता है? तीन शरीर होते हैं ना। स्थूल शरीर में तो हमारे को गोरापना कालापना अध्यास होता है, नाम का अध्यास होता है। सूक्ष्म शरीर में कर्ता भोक्तापना होता है, गुणवान अगुणवान धर्मवान अधर्मवान, ये सब हमारे को अध्यास सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और कारण शरीर है जो तीसरा, उसमें हमारे को अध्यास कैसा होता है? मैं अज्ञानी हूँ, ये अध्यास होता है कि नहीं? मैं नहीं जानता। ये किसका है? ये धर्म ना जानना कारण शरीर का धर्म है, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, ये हमारा उसके साथ अध्यास हो गया, हम अपने आप को कारण शरीर मानने लगे। तो शरीरों के धर्म को हमें अपने आप में मान लिया तो हम अपने आप को शरीर मानने लगे। जब हमारे को इतना किसी ने बता दिया कि गोरापना कालापना आपका धर्म नहीं है, जन्मना मरना आपका धर्म नहीं है, मरता शरीर है, जन्मता शरीर है, आप नहीं मरते, हर के सेवक जो हर भाए तिनकी कथा निरारी रे, कहते हैं गुरु महाराज, हर के सेवक, हरि के सेवक जो हरि के परमात्मा के भक्त है ना, हर के सेवक जो हर भाए, हरि के सेवक जो हरि को अच्छे लगे, हरि से जिनका अभेद हो गया, तिनकी कथा निरारी रे, उनकी कथा ही निराली है, संसार से क्या है, आवे है ना जाहे ना कब हूं मरते, वो कैसे है ना आते हैं ना जाते हैं ना कभी मरते हैं, पार ब्रह्म संगारी रे, क्योंकि वो पार ब्रह्म के संगी हैं, उसके साथ भेद हो गए हैं, ना वो जाते हैं ना आते हैं ना मरते हैं ना जन्मते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मरता क्या है शरीर, जन्मता क्या है शरीर, माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया, हमारे को नहीं दिया, हम लोगों को जन्म नहीं दिया माता पिता ने, शरीर को दिया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे को जन्म दिया है, हमारे शरीर को जन्म दिया उन्होंने, और हमारे शरीर का नाम ही उन्होंने रखा, हमारा ना नाम है ना हमारा शरीर है। जब तक ये बात हमारे को निश्चय नहीं होती तब तक हम इस शरीर को अपना आप मानते हैं। जब ये निश्चय कर लेंगे कि हमारे जन्म से पहले भी कोई नाम नहीं था, जन्म के बाद में भी नाम नहीं रहता, इसलिए हम नाम नहीं है, हम नाम वाले भी नहीं है, जिसका नाम रखा वो भी हम नहीं है, हम नाम भी नहीं है, तो इसलिए रामलाल श्यामलाल जो नाम है ना वो शरीर के हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं तो नाम हमारा कहाँ से आएगा, यदि शरीर हमारा होता तो कभी भी हमारे हाथ से जाता नहीं, ये भी बात होती है, जो हमारी होती है ना वस्तु वो हमारे से कोई ले थोड़ी सकता है, यदि कोई ले भी लेगा तब भी हम थोड़ी देर के बाद उससे ले लेंगे ना, जबरदस्ती ले लेंगे या कैसे कानून से ले लेंगे, ले ही लेंगे क्योंकि वो हमारी है, वो शरीर यदि हमारा होता तो फिर हमारे से जाता नहीं है, यदि शरीर हमारा होता तो हम इसको बुढ़ा नहीं होने देते, है कि नहीं बात, यदि शरीर हमारा होता तो ये हमारे बिना पूछे बुढ़ा कैसे हो जाए, नहीं ना होना चाहिए, लेकिन वो जाता है कि नहीं, कभी रोक पाएगा कोई, जब हम बाल्य अवस्था में हैं तो इसको जवान ही नहीं होने देंगे, हम कहेंगे हम बाल्य रहेंगे, हमारा नहीं है ना वो, देखते देखते जवान हो गया, फिर जवानी को आप रोक के रखो, यदि हमारा है ये शरीर, हम शरीर है ना तो हम जैसा चाहें वैसा ही बने रहें, तो नहीं ना बन पाते, इसलिए हमारा नहीं है। इस बात को कबीर जी ने बहुत डंके की चोट पर कहा है उन्होंने, कबीर एहो तन जाएगा, वो कहते हैं कबीर जी के जो शरीर है आपका जो जाएगा, मैं कहता हूं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि जो शरीर आपसे जाएगा, सको तले हो बहोर, यदि आप में हिम्मत है शक्ति है तो इसको रोक लो, ये चैलेंज है कि नहीं उनका, कबीर एहो तन जाएगा, वो कहते कबीर जी के शरीर जाएगा तेरे से, मैं तेरे को पहले बता रहा हूं, जब किसी को पहले बता दो तो सावधान हो जाता है कि नहीं, वो कहते जाएगा, सको तले हो बहोर, कहते जाएगा नहीं, ये भी कहता हूं यदि हिम्मत है तो इसको रोक लो आप, तो कभी ऐसा कोई है जिसको पहले बता दीजिए तब भी उसका नुकसान हो जाए, नहीं ना हम लोग रोक पाते, वो कहते नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोड़, वो भी चले गए कोई नहीं बचा, सको तले हो बहोर, इसलिए इसको आप रोक नहीं सकते, कबीर एहो तन जाएगा सको तले हो बहोर, लेकिन हम इसको बहोर मतलब रोक लो मोड़ लो इसको, मोड़ नहीं पाते, इसका मतलब हुआ ये हमारा नहीं है, जब हमारा नहीं है तो इसके साथ फिर चिपकना नहीं चाहिए ना, इसका मतलब हम इससे अलग हैं, ना शरीर हमारा है ना हम शरीर हैं, ये तो स्थूल शरीर की बात है, फिर सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या है, 17 तत्वों का जो बना हुआ है वही सूक्ष्म शरीर है ना, तो हमने उसके धर्मों को अपने आप में मान लिया तो हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानने लगे। कर्तापना भोक्तापना और भूख है, प्यास है, हर्ष है, शोक है, ये सब स्थूल शरीर का नहीं सूक्ष्म का धर्म है। हमने अपने आप में मान रखा तो हमने अपने आप को सूक्ष्म शरीर मान लिया। तो ये तीन शरीरों में हमारा अध्यास हो रहा है, इसी में दोनों अध्यास हो जाते हैं, ज्ञान भी और अर्थाध्यास भी। इस वस्तु को हमने मान लिया तो इसका ज्ञान जो हुआ स्थूल शरीर का, गोरा काला छोटा मोटा ये सब ज्ञान हुआ इसका, इसका भी अध्यास हो गया वस्तु का भी और ज्ञान का भी अध्यास हो गया। जे ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दोनों प्रकार की भ्रांति हमारे को हो रही है, ना हम वस्तु हैं ना वस्तु का ज्ञान हमारे में है, कुछ भी नहीं है भाव, ना स्थूल शरीर है ना स्थूल शरीर का कोई ज्ञान है। संसार भी मिथ्या है, संसार का ज्ञान भी मिथ्या है। पर इसको निश्चय करने के लिए ये जो महात्मा लोग आपको बार बार सुचेत करते हैं ना, जितनी पद्धति बतलाते हैं, ये सब हमारे को सावधान करने के लिए कि आप समझ जाइए कि आप जिस भ्रम में पड़े हैं ना, ये भ्रम मिथ्या है, ये अज्ञान का कारण है। अपने आप को ना जानने से ही हमारे को ये प्रपंच दुखी करता है। जो जान जाते हैं वो इसी प्रपंच में रहते हैं, कहीं भाग नहीं जाते हैं, वो यहीं रहते हैं, लेकिन उनको दुखी नहीं करता। क्या करते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, वो क्या सुख दुख मान अपमान सबको एक जैसा मानने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया ना कि सुख और दुख जो है ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है, मान और अपमान ये भी सूक्ष्म शरीर का धर्म है। नहीं ना, उनको फिर अध्यास छूट गया उनका, और क्या हुआ, फर्क सोखते रहे अतीता, हर्ष और शोक से अलग क्यों हो जाते हैं, उनको है कि हर्ष और शोक सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण का धर्म है, मेरा नहीं धर्म है। ना वो फिर खुश होते हैं ना वो दुखी होते हैं। जब तक हम लोगों को सुख दुख का अनुभव हो रहा है तब तक मान लो कि हम लोग सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जब शरीर से अलग हो जाएंगे तब हमारे को ना सुख है ना दुख है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सौ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, उसको ना हर्ष है ना शोक है ना मान है ना अपमान है, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, वो है जीवन मुक्त जो एक जैसा रहता है सब में। हम लोग भी जब ऐसे सत्संग में बैठेंगे विचार करेंगे महात्माओं की शरण में तो एक ना एक दिन हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।